हमारी सीरीज मेरी जन्नत की मजलिसें, इसका आज इंशाअल्लाह व ताला हम थर्ड एपिसोड देखते हैं। हम चलते जा रहे थे, मैंने अहमद से पूछा, आपकी बच्चों से मुलाकात हुई, वो कहाँ हैं? इस सारे अरसे में मुझे तो कोई भी याद नहीं रहा। मेरे बच्चे किधर, मेरे वालदैन, शौहर, हैरत है, किसी का ख्याल ही नहीं आया। वो बड़ी मुलायमत से और मोहब्बत से बोले, हाँ ये बताओ मेरे बाद बच्चे कैसे निकले? मैंने कहा, मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर कुछ हालात और कुछ माहौल ऐसा था कि बच्चे वैसे नहीं निकले जैसे मैं चाहती थी। नमाज रोजे की तो पाबंदी बचपन से ही उनको कराई, वो तो नहीं छोड़ते थे, मगर इसके अलावा नेकी और तकवा के वो आला मकामात हासिल नहीं कर सके जैसे होने चाहिए थे। मैं खुद क्या करती, मैं तो खुद अपनी जिंदगी को घसीट रही थी। जब तक दूसरी शादी नहीं हुई, घर का खर्चा चलाना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, और शादी हुई तो दिन रात के ताने और टॉर्चर। फिर मैं किसी काम की नहीं रह गई। मैंने ये दिन बड़े सब्र से काटे, और सब्र बहुत काम आया। आज देखें, हर तरफ से फरिश्ते यही कह रहे हैं, जजा अम बीमा सबर, तो ये इस चीज की जजा है जो तुमने सबर किया। और ये सबर मुझे कुरान ने सिखाया। आपके चले जाने के बाद मैंने कुरान को अपना साथी बना लिया था। कुरान मेरे दिल की बहार बन गया था, मेरे दुखों का मदावा बन गया था। दूसरे शौहर की जो कड़वी कसीली बातें सुनती तो कुरान खोल लेती, और यूं लगता था कि कुरान मुझे एक शफीक और मेहरबान माँ की तरह दिलासे दे रहा है। अम्मा तो आपके जाने के कुछ अरसे बाद ही फौत हो गई थी। सब बहन भाई अपने अपने घरों में अपने मसाइल में थे, किसी से अपना दुख कहती तो कितने दिन कह सकती थी। जानते हैं अहमद, आज मैं कुरान की वजह से यहां हूं। इस कुरान ने मेरी ऐसी सिफारिश की हशर के मैदान में, यूं मेरे लिए खड़ा हो गया कि मुझे जन्नत में दाखिल करवा के ही रहा। इसने इससे पहले दम नहीं लिया, मैं तो खड़ी थी और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं खामोश थी, ये मेरे लिए बोल रहा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे बच्चा कोई शरारत कर दे तो उसके बाद अपनी माँ के पीछे छुप जाता है और माँ उसको डिफेंड करती है। इसी तरह ये कुरान झगड़ रहा था मेरे लिए अल्लाह ताला के आगे, और मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ये कमजोर ना पड़ जाए, कहीं ये गिव अप ना कर दे, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। और अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरी तो इसके अलावा कोई सिफारिश भी नहीं। और ये तो उन्हीं का साथ देने वाला था, उन्हीं के लिए सिफारिश कर रहा था जिन्होंने इसको अपनी जिंदगी बना लिया था, इसके साथ वक्त लगाया था, इसको पढ़ा था, इसको सीखा था, इसको समझा था, इस पे अमल किया था, इसको अपना इमाम बनाया था, जो इस पे अमल करने वाले थे। और मैं जब इसकी सिफारिश सुन रही थी तो मैं रह रह के सोच रही थी कि मुझे अगर पता होता कि ये इतना मजबूत सहारा, ये मेरी सिफारिश करेगा, मेरे हक में बोलेगा, तो मैं तो इसके साथ और भी ज्यादा वक्त लगाती और भी ज्यादा मेहनत करती। इसने मेरा साथ यहां नहीं छोड़ा, और इसने मेरा साथ जिंदगी में भी नहीं छोड़ा। जब आप दुनिया से चले गए तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया था, जहां से मेरे दिल में इस कुरान की ऐसी मोहब्बत भर गई कि फिर इसको पढ़े सुने समझे बगैर मुझे चैन नहीं आता था। मेरा अक्सर वक्त कुरान के साथ ही गुजरता था। जिंदगी में बड़े तल्ख हालात गुजरे, मगर इसी के सहारे मैं चलती गई। यूं लगता था अल्लाह ताला इसके जरिए मुझसे बात कर रहा, यूं लगता था अल्लाह ताला इसके जरिए मेरे मसलों के हल मुझे समझा रहा है और मेरे दिल को थाम रहा है, मुझे तसल्ली दे रहा है। आपको पता है कब्र में भी ये मेरे साथ रहा। वहां मैं बहुत घबरा रही थी, कब्र में बहुत वहशत थी, मगर ये अचानक कहीं से आ गया और कहने लगा मैं आपकी कब्र का साथी। तब मेरी सारी घबराहट जाती रही और ये नूर बन गया, तो मेरी सारी कब्र भी रोशन हो गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे सहारा दे दिया, कोई है मेरे साथ, वरना कब्र की तन्हाई, उसकी वहशत, उसका अंधेरा मेरी तो बर्दाश्त से बाहर था। वहां से तो ना कहीं भाग कर जा सकती थी, ना किसी को अपने पास बुला सकती थी। ऐसे में ये ना होता तो मेरा भला क्या हाल होता। मेरे रब ने मुझ पर बड़ा ही करम किया कि उसने इसकी सिफारिश मेरे हक में कबूल करके मुझे यहां दाखिल कर दिया और मेरे सबर का बदला मुझे बुलंद दर्जों की सूरत में दे दिया। अहमद खामोशी से मेरी सारी बातें सुनते चले जा रहे थे, शायद वो भी जानना चाहते थे कि उनके बाद मेरे साथ क्या कुछ हुआ। मैंने कहा रे मैंने तो आपको बोर ही कर दिया। और धीमे से बोले नहीं नहीं मैं बोर नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे उस माशरे में एक अकेली औरत का बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने कुरान जैसी अजीम नेमत से तुम्हें जोड़ दिया था। कितने महरूम है वो लोग जो इस तोहफे को हासिल नहीं कर सके। और इसको दुनिया में अपना सिफारशी नहीं बना सके। मैंने अफसोस से कहा हाँ बेशुमार लोग हैं जो जान ही नहीं सके कि इसमें है क्या। अहमद कहने लगे अच्छा मैं सोच रहा हूं अम्मा अब्बा से जाकर मुलाकात कर रहा हूं। मैंने कहा हाँ आप जरूर जाइए, मैं जरा बच्चों को देखूं कि वो कहाँ हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं वापस आके बच्चों से मिलता हूं। मैं अहमद को सलाम करके आगे बढ़ी। मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने जब अपने अपने वालदैन का जिक्र किया तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं हुआ, वरना दुनिया में उनका जिक्र जब आता था तो मैं बड़ी दुखी हो जाती थी। इसलिए कि अहमद के जाने के बाद उन्होंने हमें बिल्कुल छोड़ दिया था, और मुझे तो क्या अपने पोते पोती को भी कभी मुड़ के नहीं देखा। वाकई ये जन्नत है जहां पे दिलों की सारी गिल कीने बोख्स खत्म हो जाते हैं। किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई बुरे जज्बात नहीं रह गए, हत्ता कि उनके लिए भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। मैंने अपने खादिमों को बुलाया, वो फौरी सलाम करती हुई आगे बढ़ी और बोली जी हाजिर। मैंने कहा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो आयस्तगी से बोली वो तो नीचे के दर्जों में है। मैंने कहा अच्छा फिर ले चलो मुझे वहां। पलक झपकने में एक खूबसूरत सवारी हमारे सामने आके रुकी, मैं उसमें बैठ गई और वो मुझे उड़ाते हुए ले चली। ना सवारी को चलाने के लिए कोई ड्राइवर की जरूरत थी, ना किसी जीपीएस की, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। सवारी खुद ब खुद चलती जा रही थी, जैसे कि उसको पता था कि मुझे कहां जाना है। लोग दुनिया में प्राइवेट जेट्स की आरजू किया करते थे, मुझे इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत सवारी यहां मिल गई जो उड़ती चली जा रही है। और मैं नीचे देख देख कर हैरान हो रही हूं, कैसे कैसे हसीन मनाजिर, कितने खूबसूरत महल, कहीं खेमे मोतियों की तरह, कहीं आबशारें, कहीं नहरें, कहीं बागात, कहीं फरिश्ते, सारा माहौल पुरसकून। ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई बदतमीजियां, ना कोई गुल गुबाड़े, ना कोई आपे से बाहर हो रहा है, ना कोई रूडनेस, ना कोई परेशानी, ना कोई गम। अगर यहां पे कोई और नेमत भी ना होती, तब भी इतना ही काफी था कि यहां पे सुकून है, हर तरफ सुकून। इस सुकून की तलाश में ही तो दुनिया में हर कोई मारा मारा फिरता था। मैं नीचे के नजारे देखती जा रही थी और सवारी उड़ाए ले जा रही थी मुझे। दुनिया में जहाजों में फर्स्ट क्लास में सफर करने का तो अरमान ही दिल में रह गया। यहां मेरे रब ने उससे कितनी ज्यादा बेहतरीन सवारी मुझे दे दी, जिसका तसव्वुर भी कोई इंसान दुनिया में नहीं कर सकता। आरामदेह और खूबसूरत, वक्त का पता भी नहीं चला और ये सवारी एक शाही महल के सामने आके खड़ी हो गई। मेरा इस्तकबाल करने के लिए बहुत से खादिम आगे बढ़े, मुझे खुशामदेद कहा और मुझे बड़े प्रोटोकॉल के साथ अंदर ले गए। ये महल क्या था, ऐसे जैसे बादशाहों की महल होते थे दुनिया में, उससे कहीं ज्यादा हसीन। मैं महल में दाखिल हुई और चारों तरफ देखने लगी। महल नेमतों से भरा हुआ था। सामने तख्त पर मेरा बेटा बैठा था। अरे मेरे लाल, मेरे शहजादे, तुम यहां कैसे हो? वो मुझे देख के दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। उसका रंग कुछ उड़ा उड़ा लग रहा था। मैंने उसको प्यार किया और कहा, बेटा क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो बोला, आप बैठे तो सही, बताता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर सामने जो बड़े बड़े जवाहरात से मुजयन तख्त था उस पर ले गया। उसके खादिम उसी वक्त बड़े खूबसूरत थालों में खाना ले आए। ये आपके लिए पहली मेहमानी है, मछली से। खाने की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि दिल कर रहा था सारा ही खा लें। मुझे ख्याल आया कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, फिर खुद ही खुद अंदर हंस दी, अरे ये तो जन्नत है, यहां थोड़े ही कोई ऐसे मसले हैं। मैं और हसन बिस्मिल्लाह पढ़ के शौक से खाना खाने लगे। खाने की खुशबू ही अच्छी नहीं थी, इसकी सजावट, इसकी लज्जत भी बेमिसाल थी। ऐसा लजीज खाना मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं कभी खाया। दुनिया में तो मैं ज्यादा मछली की शौकीन नहीं थी, मगर ये कोई मछली थी, ना जाने क्या चीज थी, जो हम खाते ही जा रहे थे और यूं लगता था पेट में इतनी ज्यादा गुंजाइश है कि बेशक जितना मर्जी खा लें, ओवर नहीं होगा। दुनिया में मुझे याद है कोई लजीज खाना कभी मिल भी जाता था तो कहते थे पेट भर गया, नियत नहीं भरी। पेट में गुंजाइश ही कम होती थी, कुछ ज्यादा नहीं खा सकते थे चाहे जी भी चाहता हो। मगर यहां तो ऐसा मसला ही नहीं, जितना मर्जी खाओ, हर लुक्मे का जायका फर्क, मजा फर्क। ऐसा खाना तो वहां पे बड़े बड़े महंगे होटलों में भी कभी ना खाया। और क्रॉकरी के तो क्या ही कहने, सोने चांदी के बर्तन, खादिम हाजिर बाश खड़े में रहीक के जाम पकड़े हुए। ये रहीक वहां की शराब है, ये खादिम वो जाम हमारे सामने करते हैं। और खादिम क्या, इनको तो खादिम कहते हुए भी शर्म आती है। ये तो बिखरे हुए मोतियों की तरह इतने खूबसूरत, नौउम्र लड़के तेजी से इधर उधर काम करते हुए फिर रहे थे। उन्होंने हमें शराब पेश की, ये नाम को शराब थी मगर ना जायका दुनिया की शराब वाला, ना बू और ना कोई खसूसियत। सुना है दुनिया की शराब का तो जायका भी बुरा होता है। ये तो बिल्कुल ही अलग चीज थी, इसमें कोई नशा नहीं था ना अकल इससे जायल होती। मैं तो शराब के नाम से ही डरती थी। मैंने कहा मैं तो इसको जन्नत का मशरूब समझ के पीऊंगी। हसन मुस्कुरा दिया। मैंने कहा बेटा तुमने बताया नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहने लगा अम्मा आप जो कुछ भी कहा करती थी सही कहा करती थी कि गुनाहों को छोड़ दो। आप सही कहती थी कि नेकियों में दौड़ लगाओ, आखरत के लिए मेहनत करो, आखरत को अपनी तरजीह बनाओ। पता नहीं उस वक्त मुझे समझ नहीं आया करती थी। मुझे याद आ गया वाकई मैं दुनिया में इसको यही कहती थी और ये लड़का मेरी बातों को हंस के टाल देता था। मैं कहती थी बेटा ठीक है तुम नमाज रोजा करते हो मगर इससे ज्यादा की जरूरत है। आखरत के मरहले आसान नहीं है, मेरी बात को सुन लो। कितना समझाती थी मगर वो समझता ही नहीं था। कहने लगा अम्मा जानती हैं मैं जहन्नुम के कितने करीब से होके आया हूं। मैंने उसको देखा है जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा था तो मेरे लिए वो गुजरना मुश्किल हो गया। उस आग की खौफनाक आवाजें मुझे पागल कर रही थी, उसका चिंघाड़ना, उसका गुस्सा, उसका अंधेरा, उसकी तपिश मुझे महसूस हो रही थी। वो इतनी गहरी थी कि मैं तो नीचे भी देख नहीं सकता था। अम्मा मैं आपको नहीं बता सकता मेरी वहां पे क्या हालत थी। मेरे तो पसीने छूट गए थे, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। एक-एक कदम लेना मेरे लिए भारी हो गया था। मेरे पास अमल इतना नहीं था कि मेरा नूर बहुत ज्यादा होता, मुझे थोड़ा सा ही नूर मिला था और मुझे डर ये था कि कहीं मेरा पैर इस पुल से फिसल ना जाए, कहीं मैं जहन्नुम के अंधेरे घड़े में गिर ना जाऊं। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इस पे चल रहा था, मेरे कदम डगमगा रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरा पैर फिसला, मैंने चीख मारी और पुल के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी जिंदगी का वो मुश्किल तरीन वक्त था और मेरे मुंह से सिर्फ रब्बी सल्लिम निकल रहा था। अम्मा मैं वहां जिस हाल में था आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने झट से कहा मैं सदके, मैंने उसको गले से लगा लिया। फिर क्या हुआ मेरे बेटे? अम्मा फिर मुझे सब कुछ भूल गया, बस एक ही बात जुबान पे थी, ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले। मैंने अपने एक हाथ से पुल का कोना पकड़ा हुआ था, ये छूट गया तो मैं एक ऐसी आग में गिर जाता जो लम्हे में मेरा सारा गोश्त भून के रख देती, जो मेरा कुछ भी ना छोड़ती। वो तो मौत से भी बदतर हालत कर देने वाली जगह है। जिस आग की तपिश मैं पुल पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उस आग के अंदर कैसी हलनाकी होती, कैसा अजाब होता। मुझे अंदर से लोगों के चीखने और रोने और फरियादें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हाय बेटा फिर क्या हुआ? अम्मा फिर आपका बेटा उस रब के रहमो करम पर था, जो मेहरबान हो जाता तो मैं पार लग सकता था, वरना मैं इसी काबिल था कि मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। फिर मेरे प्यारे नबी ने शिफात की, तो मैं उसकी वजह से आग से निकल सका, वरना तो मैं आग में जलकर भस्म हो चुका होता, कोयला बन चुका होता। अम्मा आपको भी मेरी याद ना आई, मगर देखे मेरे नबी ने मुझे याद रखा। जानती हैं, लोगों ने मुझे बताया कि वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल हुए थे, मगर अपनी उम्मत की उनको इस कदर फिक्र थी कि वो बार बार उम्मत की शिफात के लिए अल्लाह ताला के आगे सजदे में गिर जाते, और शिफात की इजाजत मिलती तो अपने उम्मतियों को निकाल के लाते। मैं तो अभी गिरा भी नहीं था, पुल सिरात पे अटका ही हुआ था, मगर ये वक्त भी मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। ये ऐसा खौफनाक वक्त था कि अम्मा मैं अपनी पूरी जिंदगी की दौलत, अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया, अपनी पूरी जिंदगी का वक्त, एक एक लम्हा इससे बचने के लिए दे सकता तो दे देता। आप सोच ही ना सकती, इस थोड़े से वक्त में मुझ पर कयामत से भी बड़ी कयामत गुजर गई। बस मैं लरज रहा था और रो रहा था, और जहन्नम के शोले ऊपर को लपक रहे थे कि किस वक्त वो मुझे दबोच लें। इससे ज्यादा वहशतनाक मंजर ना मैंने कभी देखा ना सुना, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इन चंद मिनटों पे मुझे, मेरे ऊपर क्या गुजर गया, और ऐसे लगता था कि चंद मिनट नहीं सदियां हैं। और मैं कह रहा था आज मुझे मेरा रब यहां से बचा ले तो मैं अपना सर सजदे से कभी नहीं उठाऊंगा। बस वो मेरे ऊपर करम कर दे तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। वाकई अम्मा कुरान सही कहता था, जो जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो ही कामयाब। अम्मा काश मैं लोगों को दुनिया में जाकर बता सकूं कि बच जाओ इस आग से, खुद को बचाओ, अपनी फिक्र करो, इससे बचने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो करो, कोई चीज भी मुश्किल नहीं इससे बचने के लिए, कोई कीमत भी भारी नहीं इससे बचने के लिए। तुम्हें कुछ भी देकर इससे अगर बचाव मिल जाता है तब भी सस्ते में छूट गए। बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। अगर जहन्नुम को दुनिया के इंसान देख लेते तो वो रो रो के जंगलों में भाग जाते, वो कभी हंस ना सकते, वो कभी खा पी ना सकते, वो कभी मजा ना कर सकते। अम्मा मुझे समझ आई कि वो जो हम बुजुर्गों के किस्से पढ़ते थे कि वो जहन्नुम को याद कर करके बहुत रोते थे, वो वाकई ऐसी जगह थी जो मैंने देखी है। वाकई वो ऐसी जगह थी कि इंसान उसके खौफ से रोए। इस एक लम्हे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों को याद कर लिया। इन चंद मिनटों में मैंने वो दिन रात याद कर लिए जब मेरे पास वक्त हुआ करता था, मगर मैं उस वक्त को गवा देता था, उसमें कोई नेकी नहीं करता था। वो मेरा सारा वक्त जाया हो गया, जो वक्त बगैर नेकी के गुजर गया वो जाया था। मैं यही समझता रहा कि जो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया यही काफी है। मेरे अंदर वो तड़प नहीं थी अम्मा कि जल्दी बहुत सारी नेकियां समेट लूं, मुझे फिक्र नहीं थी आखरत की, ऐसे जैसे होनी चाहिए थी। मुझे ये डर नहीं था कि अगर मेरी नेकियां कम हो गईं तो क्या होगा। यहां का सरमाया तो नेकी है, कोई ना लेकर आया तो उसके लिए आग है। मैंने क्यों नेकियां जमा नहीं की, मैं खुद को मलामत किए जाता था। मेरे जैसे ना जाने और कितने नौजवान उस आग में जल रहे होंगे, मेरे ऊपर शायद मेरे रब को रहम आ गया, मेरे नबी ने मेरी शिफात की, मेरे रब ने उनके दिल में डाला। मैं तो हक ही अदा नहीं कर सकता उनका, जो अपनी जन्नत को छोड़ के मुझ जैसों की शिफात करने के लिए दुआएं कर रहे थे। जानती हैं जिस वक्त मेरी मुट्ठी ढीली पड़ने लगी और मुझे लगा कि बस अब मैं गया, अब मैं गया, अब मेरा खात्मा होने वाला है, जब चीख चीख के मेरा गला जलने लगा और आंसू तो थमने का नाम ही ले रहे थे, जब मुझे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, उस वक्त एक तरफ से एक फरिश्ता आया और मुझे उठा के पार खड़ा कर दिया। अम्मा, अगर मैं वहां गिर जाता तो मेरा क्या हाल होता, ये सोच सोच के मैं अभी तक संभल नहीं पाया। उसकी एक झलक भी इतनी खौफनाक थी, सोचता हूं उसके अंदर का हाल क्या होगा। काश आज दुनिया होती तो मैं उस दुनिया में वापस जाता और लोगों को बताता कि कभी इस आग का सौदा ना करना, किसी कीमत पे भी ना करना। कोई चीज दुनिया की इस काबिल नहीं थी कि उसकी खातिर तुम आग का सौदा कर लो। मगर पता नहीं, जैसे हमें समझ नहीं आती थी उस वक्त, शायद किसी और को भी ना आती। अम्मा, वो क्या नशा था जो दुनिया का ऐसा चढ़ गया था दिमाग पे कि हम समझ के भी समझ नहीं पाते थे। वो तो मेरे रब का करम था कि आप जैसी मां हमें मिल गई, जो बुराइयों से हमें हमेशा रोकती रहती थी, टोकती रहती थी, नेकी के कामों के ऊपर उभारती रहती थी, पुश करती थी हमें अमल करने पर। उस वक्त तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर आज सोचता हूं कि अगर आप ऐसा ना करती तो तब मेरा क्या बनता। अगर दुनिया के लोग इस आग को देख लेते तो उनके तो कलेजे ही फट जाते, मर जाते वो। अल्लाह ताला ने तो बार बार कुरान में हमें इसके बारे में बताया था। एक हम ही थे जो असर ही नहीं लेते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि बस हम कुछ भी ना सुने, सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा, और अमल हम करना नहीं चाहते थे। मस्त रहना चाहते थे अपनी जिंदगी, और वो जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई। कितनी जल्दी खत्म हो गई ना मां। अगर आज मेरे पास वो वक्त वापस आ जाए तो मैं कोई एक लम्हा भी अपने रब के जिक्र के बगैर ना गुजारूं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती चली जा रही थी। वो आज वही बातें कह रहा था जो मैं उसको दुनिया में समझाया करती थी, मगर तब उसको समझ नहीं आती थी। आज इतनी क्लोज कॉल के बाद उसको सब समझ आ गया था। काश दुनिया में इंसान इस बात को समझ जाए तो इतने खतरनाक मोड़ पे आने से पहले ही संभल जाए। मैंने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। और हम दोनों अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करने लगे। मैंने कहा, अच्छा बेटा, अब तो तुम यहां आ गए हो ना, अब मत करो वो बातें, अब तो तुम जन्नत में हो, यहां से तो कभी निकाले नहीं जाओगे। वो सर झुका के बोला, हाँ अम्मा आप सही कहती हैं, मगर मुझे रह रह के ख्याल आता है कि मैंने इतने करीम रब की, इतने रहीम रब की एक पल के लिए भी कभी नाफरमानी क्यों की थी। जब से आया हूं मेरा बस नहीं चलता, मैं कैसे अपने करीम रब का शुक्र अदा करूं। मेरी जुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते थकती नहीं, मुझे वो रब ना बचाता तो मैं कहां होता, मेरे नबी बर वक्त शिफात ना करते तो मेरा क्या बनता। अगर ये उसका बहुत बड़ा करम है मुझ पर। मैंने कहा, बेटा सच कहते हो, उस रब का बहुत शुक्र है जिसने हम सबको ऐसी जगह से महफूज रखा। फिर मैंने मौजू बदला, मैंने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है और तुम्हारा भाई कहाँ है। कहने लगा, हाँ उनके घर भी यहां करीब ही हैं। मैंने पूछा, मगर तुम सब इतने निचले दर्जे में क्यों हो। वो बोला, अम्मा इसलिए कि हमारे पास इतनी नेकियां नहीं है कि हम जन्नत के ऊंचे दर्जों तक पहुंच जाते। हम जन्नत में आ ही गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जन्नत के दर्जा तो नेकियों के साथ मिलते हैं। ना तो हम आपकी तरह सबर करने वाले थे, ना आपकी तरह कुरान के साथ वक्त लगाने वाले थे, ना आपकी तरह हमने दीन के लिए जिंदगी खपा दी। मैंने उसकी बातें सुनी, मैंने कहा, या रब मैंने तो जो नेकियां की, जो दुआएं की, वो अपने लिए भी की और अपने बच्चों के लिए भी की थी। ए अल्लाह तू मेरे बच्चों को भी मेरे साथ मिला दे, तेरा तो वादा है कि तू औलाद और वालदैन को मिला देगा, जो बच्चे नीचे के दर्जे में होंगे उनको भी ऊपर कर देगा, ऊपर वालों को नीचे नहीं करेगा। या रब मेरी औलाद नीचे रह गई और मैं ऊपर हूं, इनको बुलंद कर दे, इनको मेरे साथ मिला दे। अभी ये अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि एक फरिश्ता हाजिर हो गया, सलाम किया और कहने लगा, आपके रब ने आपके बच्चों को आपके दर्जे में तरक्की दे दी है, अब आप सब एक ही दर्जे में होंगे। हसन तो खुशी से उछल पड़ा और बेख्तियार मुझे गले से लगा लिया। अम्मा आप सही कहती थी, आप ही ठीक थी। अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद करे, आप कितनी अच्छी हैं, अब हम सब सारी फैमिली एक साथ हो जाएंगे। ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। खुशी से वो दीवाना हुआ जा रहा था, मैं सजदा करूं, मैं बिछ जाऊं, मैं सदका करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं किस तरह रब का शुक्र अदा करूं। वो फरिश्ता कहने लगा, ना यहां सजदे हैं, ना यहां सदका और खैरात है, ना यहां नमाजी है, यहां तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का तराना है। उसने अपने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दिया और मैं सोच रही थी कि मेरा सबर और दीन पे इस्तकामत से चलना और मेरा कुरान मुझे इतने बुलंद दर्जे दे देगा, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करती इस रास्ते में और कभी भी ना थकती। हम दोनों उसके महल से बाहर निकले। हसन ने पूछा, अम्मा आप कौन से दर्जे पे हैं। मैंने कहा, बेटा तुम्हारे से भी 10 दर्जे ऊपर हूं मैं, बहुत दूर हमें बुलंदी पर कुछ रोशनियां नजर आई। उसने पूछा, अम्मा ये कैसी रोशनी है। बेटा ये तुमसे ऊपर के दर्जे वालों के महल्लात हैं और ये तो अभी तुमसे सिर्फ 1 दर्जा ऊपर के महल हैं। सोचो जब तुम यहां से 10 दर्जे ऊपर मेरे वाले दर्जे पे पहुंचोगे तो वहां कैसा होगा। हसन बच्चों की तरह खुश हो रहा था, बार बार मुझे प्यार करता था, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। यूं लग रहा था वो बेचैन है कि कब जल्दी से ऊपर के दर्जों में पहुंच जाऊं। मैंने पीछे खड़े खादिम से कहा, मेरे सब बच्चों को लेकर मेरे दर्जे में पहुंचा दो। हसन बोला, अम्मा ये कैसी जगह है ना, जहां ना मूविंग का झंझट ना सामान उठाने की फिक्र, बस हम ऐसे ही शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा, हाँ बेटा ये जन्नत जो है। मेरा दिल किया कि मैं अपने नबी की जियारत करूं जिन्होंने हम पर कितने एहसानात किए। मैंने अपनी खादिमा से कहा, मुझे मेरे नबी के पास ले चलो। वो बोली, वो तो अभी तक अपने उम्मतियों की शिफात के लिए मसरूफ हैं, अभी तो वो आपको मिल नहीं सकते। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। वाकई किताबों में पढ़ा तो था कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, मगर आज आंखों से भी देख लिया, और उनकी उम्मत पे शफकत जो बेमिसाल है, काश उनके उम्मतियों को पता चल जाए। वो दुनिया में भी हमारे लिए तड़पते रहे और यहां पे भी आकर अपने आखिरी उम्मत की शिफात करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर मैं सोचती हूं कि जब तक आखिरी उम्मती की शिफात होगी, तब तक उसका हाल जहन्नुम में जल जल की क्या हो चुका होगा। अफसोस है उन उम्मतियों पर जो ऐसे काम करके आए कि खुद भी जहन्नुम में जल रहे हैं, और उनकी वजह से उनके नबी भी चैन से नहीं बैठ रहे। मैं और हसन अपनी अपनी सवारियों में सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर, बहुत कुछ सीखने की बातें हैं इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप इससे सबक लेंगे और आपके दिल में जहन्नुम से बचने का जज्बा और जन्नत में जाने का शौक बढ़ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वासी बनाए और जहन्नुम से महफूज रखे, हमें भी और हमारे घर वालों को भी।
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني